मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। दोस्तों आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं फिलिस्तीनी और इसराइल के बीच जो संघर्ष का दौर चल रहा है इसकी पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। तूफान की खबरें आप पढ़ रहे हैं, तूफान, चक्रवाती तूफान, राइट। इसका नाम है ताउते। हालांकि जब आप इंग्लिश में इसका नाम प्रोनाउंस सुनेंगे तो उसमें टाउते भी कहा जा रहा है, लेकिन आप इसे ताउते मान करके चलिए। और ताऊ, चाचा ताऊ याद रखना भी बहुत आसान है, और चूंकि ये नाम म्यांमार ने दिया है तो मुझे लगता है कि ताउते शायद ज्यादा सही होगा, क्योंकि इधर जो नॉर्थ ईस्ट के हमारा एरिया है या पूरा का पूरा ये जो दक्षिण पूर्वी एशिया है इसमें ट का उच्चारण ज्यादातर त ही होता है, तो ताउते एक सही नाम है। टी ए यू के टी ए ई, इसमें शायद के साइलेंट है। खैर दोस्तों, ये जो साइक्लोन है आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। साइक्लोन पर सामान्यतः यह देखा गया है कि प्री एग्जामिनेशन में एकाध क्वेश्चन आ जाते हैं। इससे पहले भी आपको साइक्लोन के बारे में पढ़ चुके हैं। शायद आपको फनी का नाम मालूम हो, शायद एम्फन के बारे में आप जानते हो, निसर्ग तूफान भी आया था, तो अब उसमें ये ताउते भी जुड़ गया है। देखिए, ये तूफान आते हैं और भारत के संदर्भ में आप देखेंगे तो जो हिंद महासागर में ये तूफान आते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारे पास हिंद महासागर के दो भाग हैं, जिन्हें हम पूर्वी भाग को बंगाल की खाड़ी कहते हैं और पश्चिम भाग को हम अरब सागर कहते हैं, इनका नाम है। अब ये जो तूफान आता है ये अपना रास्ता तैयार करता है, और ये अपना रास्ता बनाता कैसे है इसके बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जो वायु वाला जो आपका टॉपिक है, विंड्स, है ना, किस तरीके से विंड्स जनरेट होती हैं, किस तरीके से वो आगे बढ़ती हैं, ऊपर उठती हैं, क्या उनकी रफ्तार होती है, इन सब के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ऑनलाइन लेक्चर्स के तहत इन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, और मैं इस बात की प्रशंसा करूंगा अपने प्यारे स्टूडेंट्स की कि जब भी उन्हें कोई लेक्चर बहुत अच्छा लगता है तो इसकी सूचना वो मुझे देते भी हैं, और उन्हीं में से एक टॉपिक विंड्स को लेकर के है कि सर हम तो उलझ जाते थे, समझ ही नहीं पाते थे कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे याद करें, लेकिन लेक्चर को सुनने के बाद ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। और इसे ही कहते हैं बेसिक समझ। जब आप किसी टॉपिक के बेसिक्स को समझ लेते हैं तो फिर प्री एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका उत्तर देना आपके लिए मुश्किल नहीं होता है। तो मैं बेसिक्स पे तो नहीं जा रहा हूं फ्रेंड्स। अब ये जो ताउते है, आपने देखा कि अरब सागर की तरफ बढ़ रहा है, अरब सागर में उठा, अब वो बढ़ रहा है। अब जब हम अरब सागर कहते हैं तो भारत का कौन सा तट हो गया, समुद्री तट, सीधी सी बात है कि पश्चिमी समुद्री तट। अब आपके दिमाग में बिल्कुल ये नक्शा तैयार होना चाहिए, हर समय मौजूद रहना चाहिए कि जब मैं पश्चिम तट कह रहा हूं तो उसमें कौन कौन से राज्य आएंगे। ये कोई देखने की बात नहीं है, कंसल्ट करने की बात नहीं है, तो दिमाग में होना चाहिए कि भी पश्चिमी तट पर कौन कौन से राज्य हमारे स्थित हैं, ताकि जैसे ही आप न्यूज सुने आपको पता लग जाए, अरे ये तो ठीक है, ये तो होना ही था, ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। फिर उसमें गुजरात को आना था तो उसमें गोवा को भी आना था, तो उसमें महाराष्ट्र को भी आना था, तो उसमें केरल को भी आना था। ये सारे के सारे हमारे पश्चिमी तट के राज्य हैं और वो इससे प्रभावित होंगे। और पूर्वी तट की जब हम बात करते हैं तो उसमें आंध्र प्रदेश वगैरह आ जाते हैं, वहां भी साइक्लोन आते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको जब भी इस तरह की कोई घटना पढ़ने को मिलती है तो एक अच्छी आदत होनी चाहिए कि आप उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा कंसल्ट कर लें कि तूफान कितने प्रकार के होते हैं, कैसे आते हैं, कौन कौन से तूफान दुनिया में आ चुके, थोड़ा सा थोड़ी बहुत जानकारी, बहुत ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नाम दिया है ये म्यांमार ने दिया है, जिसका मतलब होता है छिपकली, बहुत वोकल छिपकली, बोलने वाली छिपकली जो बहुत तेज आवाज निकालती है, छिपकली। दोस्तों आज मुझे एक छोटी सी सूचना मिली अखबार में पढ़ने को, और वह कैंटर को लेकर। कैंटर ये बेसिकली साफ पानी में मिलने वाला कछुआ है, कैंटर, और ये बिना खोल वाला कछुआ होता है, बिना खोल का कछुआ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस कछुए को बकायदे विलुप्त प्रजाति मान लिया गया है, कि यह कछुआ गायब ही हो गया है, लेकिन इत्तफाकन ये कछुआ मिला है, और ये जो मिला है ये केरल में मिला है। केरल की एक नदी है, उसका नाम है चंद्रगिरी वहां ये कछुआ मिला है और ये कछुआ बड़े आकार के कछुओं में से एक माना जाता है। मैंने आपको ये जानकारी दी। क्या आप सोच सकते हैं कि मैं कछुए के बारे में क्यों बता रहा हूं? या मैंने इसे सेलेक्ट किया है आज के अपने डेली ऑडियो लेक्चर के इन्फॉर्मेशन वाले पोर्शन के लिए, तो क्यों किया? इसका क्या कोई आधार है? सोच के देखिए, सोच करके देखिए कि मैंने इसका चयन क्यों किया, क्योंकि ये चयन की क्षमता तो आप में होनी ही चाहिए। नहीं तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए कितना सारा पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ से पढ़ेंगे, तो पता लगा तो जो दिमाग है वो तो कबाड़ खाना बन गया है, जबकि आपको उसे बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके का एक रूम बनाना है। तो ये मैं आपके लोगों के ऊपर छोड़ता हूं कि मैंने इसका चयन क्यों किया है। आप सोचिए और अगर सोच लेते हैं तो मुझे संक्षिप्त में बता भी दीजिए, तो मुझे लगेगा कि नहीं नहीं आपकी तैयारी ठीक तरीके से चल रही है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं। बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है जो खासकर उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जो सिचुएशन है उसके ऊपर है। शेखर गुप्ता जी का लिखा हुआ आर्टिकल है और मैं चाहूंगा कि आप इस आर्टिकल को पढ़ें और बहुत ध्यान से पढ़ें, और जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने कही हैं आप उन्हें नोट भी करें। उसमें इन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो उत्तर भारत है वो क्यों गरीब है, क्यों वहां की नदियों में शव बहाए जा रहे हैं, जबकि पॉलिटिकली उत्तर भारत ज्यादा शक्तिशाली है। हमारे यहाँ सब उत्तर भारत से सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री होते हैं, हुए हैं, उत्तर भारत से सबसे ज्यादा मिनिस्टर्स होते हैं, क्योंकि उत्तर भारत संसद में सबसे ज्यादा जो सीट है वो उत्तर भारत की है। लेकिन स्थिति क्यों ऐसी है? पर कैपिटा इनकम हम देखते हैं तो उत्तर भारत के कुछ राज्यों के सबसे कम है, मृत्यु दर देखते हैं, मॉर्टेलिटी रेट, इस सब के सब उत्तर भारत में ज्यादा है, दक्षिण भारत में कम है। इसको लेकर के इन्होंने बहुत अच्छा लेख लिखा है और उसके केंद्र में जो पॉलिटिकल विल है, या यूं कह लीजिए कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो पॉलिटिकल पार्टी जिस तरीके से राजनीति करती हैं वह है। तो बेहतर होगा कि आप इसे पढ़ें और ध्यान से पढ़ें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट भी कर लें। मुझे लगता है कि ये बातें आपके आंसर राइटिंग में, चाहे वो मेंस का की आंसर राइटिंग हो या यहां तक कि निबंध का ही पेपर क्यों ना हो, उसमें आपकी मदद कर सकती हैं और पॉलिटिकल सेंस डेवलप करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। और मुझे लगता है कि एक यंग अलर्ट सिटीजन के रूप में भी यह आर्टिकल आपको ढेर सारे तथ्य उपलब्ध कराएगा। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में जो कुछ भी हो रहा है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, एक बात जो आपके दिमाग में बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि ये जो संघर्ष चल रहा है इसके बारे में आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। अदरवाइज आप देखिए, फिलिस्तीनी और इसराइल को लेकर के बहुत से आपको इंटरनेशनल रिलेशंस की किताबों में चैप्टर मिल जाएंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको चैप्टर मिल जाएंगे, और अभी भी अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे तो इस संघर्ष को लेकर के बहुत सारे यूट्यूब पर आपको लेक्चर सुनने को मिल जाएंगे, और अच्छे लेक्चर्स मैं कहूंगा। लेकिन सवाल ये उठता है सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिहाज से कि हमारी जरूरत क्या है? क्या सच में हम उतनी डिटेल्स जानकारी अपने पास रखें जो YouTube प्रोग्राम में बताए गए हैं? क्या हमारी वो रिक्वायरमेंट है? और अगर ये हमारी रिक्वायरमेंट है तो फिर हम कितनों की ऐसी रिक्वायरमेंट पूरी करते रहेंगे? तो हमारी दृष्टि बहुत स्पष्ट होनी चाहिए अपने रिक्वायरमेंट के बारे में, अदरवाइज आप भटक जाएंगे। क्योंकि जब आपको उत्तर लिखने के लिए कहा जाता है तो आपको मुश्किल से 200 शब्द दिए जाते हैं। अब आपके दिमाग में अगर बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि इसमें से कौन सी चीजें निकाल करके आप उन्हें बताएं, तो ढेर सारे थॉट्स निकलने शुरू हो जाते हैं और आपके साथ गड़बड़ी होने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर को बताना था फिलिस्तीनी और इसराइल के बारे में और सर ये क्या बताने लगे। दोस्तों, मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं जो बताने जा रहा हूं उस पर आप यकीन कर सके, अदरवाइज आपको लगेगा कि सर ने तो फिर कुछ बताया ही नहीं, उसमें तो ढेर सारी बातें बताई गई हैं लेकिन सर ने तो कुछ भी नहीं बताया। इसलिए मैं ये बात आपसे कह रहा हूं और मैं आगे भी कहता रहूंगा ताकि आप सतर्कता पूर्वक अपनी पढ़ाई कर सके। दोस्तों, ये दो राष्ट्र हैं, फिलिस्तीन और आपका इसराइल, राइट? इसमें जो शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग हो रहा है आज, मैं आपको उनकी जानकारी देना चाहूंगा। मुझे लगता है कि मेरी इन जानकारियों को सुनने के बाद शायद आप इसके ऊपर उपलब्ध जो लेक्चर्स वगैरह हैं सुनेंगे तो ज्यादा आपकी स्पष्टता होगी, और यहां तक कि अखबारों में भी जब आप कुछ पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो सकेंगे। बेसिकली सही मायने में इसराइल नाम की कोई जगह नहीं थी, यानी राष्ट्र नहीं था, इसराइल नामक कोई राष्ट्र नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इसराइल नामक राष्ट्र का जन्म हुआ, जैसे आप कह सकते हैं पाकिस्तान नाम का कोई राष्ट्र नहीं था, 1947 के बाद उसका जन्म हुआ। इससे पहले वहां ब्रिटेन का अधिकार था। सेकेंड वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ तो बेसिकली ये जो एरिया है पूरा का पूरा इसराइल, आज के इसराइल और फिलिस्तीन को आप मिला दें तो इसका पुराना नाम हो जाएगा फिलिस्तीन, जैसे भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश को मिला दें तो इसका नाम हो जाएगा भारत, यानी कि बेसिकली यह फिलिस्तीन था। बाद में इसका विभाजन किया गया और दो भागों में एक फिलिस्तीन हो गया और एक इसराइल हो गया। मैं देखिए वो डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं कि क्या संधि हुई क्या नहीं। ब्रिटेन को बकायदे इसकी समस्याओं को सुलझाना था, लेकिन ब्रिटेन छोड़ छाड़ करके चला गया, बोले कि भैया तुम करो। यूएनओ सामने आया, यूएनओ ने इसको दो राष्ट्रों में विभाजित कर दिया, और इसका जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है यरूशलम, आप सुन रहे हैं, यरूशलम की विशेषता यह है कि यह तीन धर्मों का एक पवित्र स्थल है, तीन धर्म के लोग इसे अपना पवित्र स्थान मानते हैं। ईसा मसीह का जन्म जो बेथलम में कहा जाता है वो यरूशलम में है, क्रिश्चियन इसे अपने धर्म का स्थान मानते हैं, क्रिश्चियन ईसाई की मैंने बात ही कर दी आपको, यहूदी इसे अपना स्थान मानते हैं, धार्मिक स्थान मानते हैं, और जो इस्लाम है उनकी जो बहुत ही पवित्र मस्जिद है, कहा जाता है मक्का मदीना के बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण पवित्र स्थान है उनकी जो बड़ी मस्जिद है वो यरूशलम में है। तो इस स्थिति को देखते हुए फिर यूएनओ ने यह फैसला किया कि जो यरूशलम है यह न तो फिलिस्तीन को दिया जाएगा न इसराइल को दिया जाएगा, इसका प्रशासन सीधे यूएनओ के पास होगा। तो स्पष्ट हो गया कि कैसे इसराइल अस्तित्व में आया। अब आप सोच करके देखिए कि फिलिस्तीन एक बड़ा राष्ट्र था, उसका विभाजन करके इसराइल बना दिया गया, तो फिलिस्तीन अभी भी क्या सोचता होगा। यहां एक बात आपके दिमाग में बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि जो फिलिस्तीन है वहां रहने वाले जो लोग हैं वो मुस्लिम हैं, सामान्यतः मुस्लिम जाति मुस्लिम बहुल है, और जो इसराइल में रह रहे हैं वो यहूदी हैं जिन्हें आप ज्यूइस कहते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय आपको मालूम है हिटलर जो यहूदियों को ढूंढ ढूंढ करके जो मार रहा था वो यहूदी हैं। ये दो अलग जातियां हैं, अलग धर्म भी हैं, एक यहूदी धर्म है दूसरा इस्लाम धर्म है, कम्युनिटी भी अलग अलग है, इसराइली है तो इधर आप कह लीजिए कि अरब के लोग हैं। तो ये जो मुस्लिम जो है फिलिस्तीनी के मुस्लिम होने के कारण, या यूं कह लीजिए इस्लाम होने के कारण, जो अरब राष्ट्र हैं अरब के जो देश हैं स्वाभाविक रूप से वो फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, और जब फिलिस्तीन का विभाजन भी किया गया था तो इसे अरब राष्ट्रों ने स्वीकार नहीं किया। कैसे कर सकते थे, क्योंकि उनके अपने भाई बंधु वहां रह रहे हैं और आपने उस राष्ट्र को दो भागों में बांट दिया। तो इसीलिए अब आपके दिमाग में यह तस्वीर बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए कि ये जो संघर्ष है कहीं ना कहीं यहूदी और इस्लाम का भी संघर्ष है, और ये इसराइल है और अरब राष्ट्रों का भी संघर्ष है। इसीलिए आप वर्ल्ड हिस्ट्री में अरब इसराइल संघर्ष के बारे में भी पढ़ेंगे, तो उसे आप चाहे फिलिस्तीन इसराइल कह लें, लेकिन चूंकि फिलिस्तीन का साथ देने के लिए अरब राष्ट्र आगे आ जाते हैं इसीलिए उसे अरब इसराइल संघर्ष भी कह दिया जाता है। आज मैं दोस्तों इतनी बात इस विषय पर करूंगा, लेकिन आगे हम इस पर और बात करेंगे। तो मुख्य विषय के बारे में दोस्तों इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से एक दोस्त हैं सौरभ पाठक जो कोलकाता से हैं, उनका MBBS कंप्लीट हुआ है। तो सौरभ आपको इस MBBS बनने के उपलक्ष में बहुत सारी बधाइयां और ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को भी यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।